ओम शांति। 23/9/2018 बीता हुआ कल। इसका सेकंड प्रश्न है, जो रह गया था बीच में, कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी ईवल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उसमें क्या करना चाहिए? कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी ईवल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उसमें क्या करना चाहिए? इसके संदर्भ में एक प्रश्न पहले चल चुका है, 12 नंबर क्वेश्चन आंसर सीरीज में 24/7/17 का शायद। तो इसमें बाबा ने बताया, इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे, फिर यह इविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती, यह मन को पकड़ती है। मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है तो शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे योग युक्त आत्माएं विशेष योग भट्ठी रख करके उसको शक्ति दें और वह जो योग युक्त ग्रुप है वह समझे कि हमको ये विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं वैसे यह प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से वह बच सकती है। भले वह आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं बैठ भी सके क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है, तो वह भले ही ना बैठे लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि होकर के करते रहो तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत हो जाएगी, तो वह ईविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी लेकिन आप समझो यह कार्य करना ही है, डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। तो इसमें बाबा ने अलग अलग युक्तियां बताई हैं कि जो भी ईविल सोल्स का प्रभाव पड़ता है ब्राह्मण आत्माओं पर, उनको कैसे उनसे मुक्त करना है। तो यहां पर बाबा ने सबसे पहले सेवा केंद्र का वातावरण शक्तिशाली और उसके साथ साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली, दो बातें हैं। एक सेवा केंद्र का वातावरण शक्तिशाली कैसे बनाएं, दूसरा स्वयं का वातावरण भी शक्तिशाली कैसे बनाएं, ये दो बातें बताई बाबा ने। अगर ये वातावरण शक्तिशाली है तो ईविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती। ईविल स्पिरिट करती क्यों है उसका कारण बताया बाबा ने। एक तो मन को पकड़ती है, कहां वार करती है, मन को पकड़ती है। क्यों पकड़ती है? क्योंकि मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। मन कमजोर है तो वार करती है, अर्थात शक्तिशाली संकल्प नहीं है हमारे पास, कमजोर है। माना हम अपनी कमजोरियों के बारे में सोचते रहते हैं या दूसरे की कमी कमजोरियों को देखते रहते हैं तो ईविल सोल्स भी है कमजोर के ऊपर आक्रमण करती है। तो बाबा कह रहे हैं मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है तो शुरू से पहले ही, अर्थात बिना स्वयं गवाए, उसके प्रति ऐसे योग युक्त आत्माएं विशेष योग भट्ठी रख करके उसको शक्ति दें। तो इसमें योग युक्त आत्माओं का ग्रुप हो, बाबा कह रहे हैं ऐसा ग्रुप तैयार करो जो शक्ति दे। तो उस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? ईविल सोल्स मुक्तिदाता ग्रुप, ईविल स्पिरिट्स मुक्तिदाता ग्रुप, ये क्या तैयार करना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं तो वह जो योग युक्त ग्रुप है वह समझे, फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमको ये विशेष कार्य करना ही है। इसके लिए बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिया, जैसे और प्रोग्राम्स होते हैं वैसे ये प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें, माना इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जिम्मेवारी समझकर कि ये करना ही है। जैसे दूसरे प्रोग्राम करते हैं तो कितना हम तन मन धन से पूरा पीछे लग जाते हैं उसके, सब भाई बहनों को अपनी अपनी जिम्मेवारी देते हैं, तो उसी तरह बाबा कहते हैं ये भी एक प्रोग्राम बनाओ और इतना अटेंशन से करो। कि विशेष कार्य करना ही है, तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से वह बच सकती है। अर्थात अगर कोई आत्मा आती है इस तरह की, तो हमको इग्नोर नहीं करना, उसको बचाने की कोशिश करनी है, पूरी कोशिश। भले वे आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं भी बैठ सके, क्योंकि वो योग में नहीं बैठ सकती क्योंकि वो परवश है, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है। हाँ, वो डिस्टर्ब करेगी, इसका मतलब जो बैठने वाला डिस्टर्ब हो उसके ऊपर भी इविल सोल का प्रभाव है। हाँ, तो वो मतलब प्रभावित होने वाली भी कमजोर है, इसका अर्थ ही है। तो बाबा कह रहे हैं, तो वह भले ही ना बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि होकर के करते रहो। तो इसमें अगर दूसरी आत्मा भी डर जाती है, अगर कोई इविल सोल आती है, तो उस डर से कैसे मुक्त होने का? वो बाबा ने 69 में मुरली में कहा है कि निर्भयता का गुण धारण करने के लिए निराकार स्थिति का अभ्यास करो। जितना निराकार स्थिति में स्थित होंगे उतना निर्भय बनते जाएंगे। और जो 70 की मुरली पड़ी थी 12 नंबर क्वेश्चन में, तो उसमें बिंदु रूप की प्रैक्टिस का बाबा ने कहा था, बिंदु रूप की प्रैक्टिस का अभ्यास करो। तो बाबा कह रहे हैं, भले ही ना बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि होकर के करते रहो, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत होती जाएगी। वह ईविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो ये कार्य करना ही है, डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। तो अब ये ईविल आत्मा, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे पास आती क्यों है, किस लिए आती है, वो क्यों आती है? हिसाब किताब, एक हो गया हिसाब किताब है, और दूसरा सुख शांति की तलाश में है। जिसके साथ उसका हिसाब किताब है उसके पास में आएगी, दूसरा हाँ कोई मोह भी हो सकता है ना। एक मुरली में और भी है कि ईविल आत्माएं हैं, उनके अंदर जैसे बताया मोह के संस्कार हैं या दूसरे अन्य विकारों के संस्कार हैं, अर्थात बाबा ने कहा वासनाएं उनके अंदर भरी हुई हैं, उनकी तृप्ति के लिए वो आत्माएं कमजोर आत्माओं को ढूंढती हैं, तो वो प्रवेश करती है उस आत्मा के अंदर, और विशेष रूप से हाँ उनकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है उसमें वहां। और विशेष रूप से एक बार पहले भी बताया था कि एक कमजोर आत्मा कौन होती है, तो वो जो आत्मा एक कन्या के अंदर आई थी, तो हमने उससे पूछा था आप इसके अंदर क्यों आई, तो बोला ये अमृत वेले नहीं उठती है, उसका जवाब ये था। अब वो जो आत्मा आई होगी वो जरूर बीके होगी, नहीं तो वो कन्या क्यों बोलेगी अपना पैतृक, मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ नहीं, लेकिन वो उसके अंदर ही आई क्योंकि उसका हिसाब था उसके पास में होगा, तो अगर झूठ तो नहीं बोला होगा उसने, क्योंकि उसको झूठ बोलने से उसके क्या फायदा है। तो हाँ, तो इसलिए उसने पिछले जन्म में नहीं उठती होगी या उठाती होगी, तो उसने तर्क किया इसको कि कमजोर का कारण होने का कारण एक तो अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है, उसका उठती नहीं है वो, तो उस पर अटैक करती है। तो एक तो यह है कमजोरी का कारण, इसके लिए बाबा ने उसके समाधान का हमको सूत्र बताया, कौन सा, कि एक तो वातावरण को शक्तिशाली बनाओ, सेवा केंद्र के वातावरण से पहले हमें स्वयं के वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। तो स्वयं के वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ हमें स्वयं का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे बाबा ने एक तो सार्वजनिक प्रोग्राम बनाया कि कार्यक्रम बनाओ ऐसे, लेकिन एक व्यक्तिगत कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा। तो सार्वजनिक भट्ठी के लिए हमको कुछ एक सूत्र निकालने पड़ेंगे, उस पर कुछ विशेष अटेंशन देना पड़ेगा सवेरे से लेकर रात्रि तक, तो हमारा अर्थात हमारा अमृत वेला भी शक्तिशाली हो। जैसे बताया ना उस दिन, आंख ऐसे भी नहीं होनी चाहिए अर्थात नींद से, वैसे तो पलक झपकेगी लेकिन नींद से हमारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, हैं? हाँ, पलक नहीं झपते वो भी सोते, तो वो भी नहीं सोने का, अर्थात वो भी स्मृति हमारी होश में रहे। तो आप ऐसा अनुभव कर लेते हैं क्या? तो एक तो हमें अमृत वेला बहुत शक्तिशाली चाहिए, उसकी हमको पूर्व से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे हमारा अमृत वेला शक्तिशाली हो। या जिस स्थान पर रहते हैं वहां का वातावरण शक्तिशाली हो, तो उसके लिए हमारा कहां कहां समय जा रहा है, क्योंकि हम स्वयं शक्तिशाली नहीं, तो भावने का अंत में एक एक का अंदर दस दस आत्में घुस सकती हैं। तो जब दस आत्में घुस जाएंगी तो हालत उस बंदर जैसी हो जाएगी जो पहले से चंचल है और ऊपर से उसने शराब पी ली, पागल हो गया वो, और दस आत्में भी घुस गई तो क्या हाल होगा उसका। और वो तो आत्में आएंगी आएंगी, तो भावने चेत किया पहले से, क्योंकि भावने का अंत में ऐसी आत्में आएंगी जो कमजोर है, और कमजोर आत्माओं को ठिकाना देने के लिए, मुक्ति का मार्ग बताने के लिए तुम बच्चों को करना पड़ेगा। उसके लिए बाबा ने निमित्त बनाया हुआ, क्योंकि पहले से हमको पेपर बता दिया गया कि एविल स्क्रिप्ट्स का प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको घबराना नहीं है, लेकिन उससे पहले हमको पहले स्वयं शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली होंगे तो ही नहीं घबराएंगे, पहलवान ही सामने से ताकतवर आ रहा है और हम कमजोर हैं तो नेचुरली हमारी हार हो जाएगी, घबराएंगे हम। तो पहले से हमको इतना शक्तिशाली स्वयं को बनाना पड़ेगा, इतना निर्भयता के गुण से परिपूर्ण करना पड़ेगा, ताकि ईवल सोल्स का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, बल्कि उनको भी हम मुक्त कर सकें। और दूसरा, उनसे डरना नहीं है, क्योंकि भावने का वो कमजोर मन के ऊपर वार करती है, तो मन हमारा कमजोर है पहले से ही, तो वार करेगी, तो मन को शक्तिशाली बनाना साथ में, अर्थात स्वमान लेना है, मैं मास्टर भूतनाथ हूं। इस कब लेना है? रात को 12 बजे अमृत वे ले लेना, सही बोला ये तो ये, क्योंकि पहले से हमको फुल चार्ज करना, वास्तव में इसका टाइम से लेना कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ईवल सोल को बताया कि थोड़ी नहीं आएगी, मैं सवेरे आएंगी या शाम को आऊंगी, वो तो कभी भी आ सकती है। तो हमको पहले से ही इतना शक्तिशाली स्वयं को बनाना पड़ेगा, स्वमान का अभ्यास, अभ्यास अर्थात उस पर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, ताकि वो स्वमान हमको केवल एक शब्दों तक ही सीमित न रह जाए, वो लगे सचमुच सुमान की शक्ति हमारे में समा रही है। तो वो योग में बैठे बैठे भी उसका चिंतन करना है, ताकि आत्मा शक्तिशाली बन जाए। तो बाबा ने कहा यहां मन कमजोर होता है, तो एक तो अमृत वेला शक्तिशाली बनाना है, और सुमान का अभ्यास, और योग के अलग अलग विजन, जैसे मैं आत्मा परमात्मा शत्रछाया में चल रही हूं तो मुझे किसी भी आत्मा का परछाया प्रभावित नहीं कर सकता, उसकी शत्रछाया के अंदर नहीं है, अर्थात विस्मृति है, जैसे बताया था बेहोशी में है, तो ही हमारे पर कोई आक्रमण कर रहा है। अगर हम पहले से होश में हैं, चारों तरफ पहरेदार खड़े हैं, पूरे सतर्क हैं, जग हैं, तो कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता है। पहले से हम विस्मृत हैं तो हमारे पर आक्रमण कर रहा कोई, तो स्मृति और विस्मृति सारा खेल ही है। तो तीसरा, उसकी शत्रछाया के अंदर रहना है। फिर चौथा, संघ की बहुत संभाल करने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा ताकतवर तभी बनेगी हम उसको शुद्ध संकल्पों का भोजन देंगे। अगर हम संघ में जा रहे हैं जहां हमारा खुद ही नुकसान हो रहा है, जहां हमारे ईबल विचार ही हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं हमको भी खुद जांच करने की जरूरत है, कहीं ईबल सोल हमारे ऊपर भी तो ना प्रभावित आक्रमण कर रही है। हम तो कई बार सोचते हैं जिस समय अगर हमारा योग नहीं लग रहा है, हम सारे दिन में निर्विघ्न है और योग नहीं लग रहा है, किसी का कोई विघ्न भी नहीं आया, फिर भी योग नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव तो है, ईवल संस्कार ही। ओ बाबा ने 69 के मूल्य में कहा ईवल संस्कार भी ईवल सोल के इक्वल ही हैं, पागल जैसे बना देते हैं वो। तो ईवल संस्कार हमारे कहीं सुख को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं, उस संघ जो ईवल संघ हमको, जैसे बाबा कहते बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, ये तो सब ईवल ही ना, हियर नो ईवल, सी नो ईवल, टॉक नो ईवल, डू नो ईवल, ईट नो ईवल, थिंक नो ईवल, तो ये भी ईवल सोल का सूक्ष्म में प्रभाव हमारे ऊपर तो नहीं कहीं पड़ा, और हम सोच रहे मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और जैसे ईवल सोल का अटैक होता तो कोई प्रभावित होते ही तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। अगर पहले से हमें सोमान का अभ्यास है और ईवल सोल आती भी है तो हम अप्रभावित रहेंगे उससे, हमें अपना कर्तव्य याद आना चाहिए उसके हमको क्या करना है, और वो याद तभी आएगा जब हमारी पहले से तैयारी होगी, तो ये हम उस आत्मा से नहीं डरेंगे बल्कि उसको रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे, उसको ठिकाना लगाने के लिए हमारे में वो ताकत बाबा भरेगा, उसमें काम करेगा। तो एक तो ये करना है कि स्वयं को बेहोशी की हालत में नहीं रखना है, अर्थात संघ से हमें स्वयं को बचाना है, क्योंकि मन शक्तिशाली होगा तो ही हम इस पर काम कर सकते हैं, और भोजन में भी आकर्षण कई तरीके से सूक्ष्म रूप से इवल इफेक्ट हमारे पर पड़ सकता है। हाँ, और बाबा ने कहा ना कि अगर बाप की याद में भोजन नहीं करते तो भोजन माया खा जाती है और सारी ताकत माया को मिल जाती है, खुशबू से भी आकर्षित हो जाती है। और इसके लिए बाबा ने 69 की मुरली में एक बार कहा कुमारियों की भट्टी में कि तुम आत्माओं को परखने की शक्ति बहुत चाहिए, परखने और निर्णय करने की शक्ति, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारी आत्माएं आएंगी जो मुक्ति का मार्ग ढूंढेंगी। तो लेकिन उसको परखने के लिए पहले आपको वहां स्नेही स्वरूप बनना है या शक्ति स्वरूप बनना है, ये पहले से कई बार हमको उस स्नेह में बह भी नहीं जाना है। तो बाबा ने कहा अंत में शक्ति अवतार का गायन है, गोपी अवतार नहीं है, गोपी गोपी का खेल पूरा हो चुका बाबा ने कहा। तो शक्ति अवतार बन के पहले से उतना स्वयं को शक्तिशाली बनाना है तो उसके लिए परख शक्ति चाहिए, परखने और निर्णय की शक्ति। और इसके लिए बाबा ने कहा था परखने और निर्णय करने की शक्ति तब आएगी जब एकाग्रता की शक्ति होगी, और एकाग्रता तब आएगी जब योग अच्छा होगा। अर्थात कौन सी शक्ति होनी चाहिए उसके लिए? और मन बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, मन बुद्धि की लाइन भी क्लियर कब होगी? दृढ़ता की शक्ति। तो बाबा ने एक बार वही मुरली में कहा हुआ है कि दृढ़ता की शक्ति होगी कि करना ही है तो एकाग्रता आएगी उसमें। कोई हम कार्य को करते हैं तो एकाग्रता अपने आप, क्योंकि दृढ़ता है तो हम हर तरीके से अपने मन को वहां लगाने का प्रयास करेंगे, मन उस पर एकाग्र हो जाएगा। तो दृढ़ता की शक्ति होगी तो एकाग्रता आएगी, एकाग्रता की शक्ति होगी तो परखने की शक्ति आएगी, निर्णय की शक्ति आएगी, और निर्णय परखने की शक्ति होगी तो सामने वाले को हम परख सकते हैं कि इसको क्या चाहिए, इसके ऊपर उसको किस चीज की जरूरत है, हम निर्णय कर पाएंगे उसमें कि इसको किस तरीके से हमको हैंडल करना है। तो मन को कमजोर करने के बजाय मन को शक्तिशाली बनाना है। बाबा ने कहा अंत में बहुत अशुद्ध आत्माएं बाहर करेंगी, इसलिए ध्यान रखना है दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं, अकाले मृत्यु, आपदाएं, पाप कर्म वाली आत्माएं बढ़ती जाएंगी, और वो ही हो रहा है संसार में, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। फिर बाबा ने कहा ऐसी अशुद्ध आत्माओं को, भटकी आत्माओं को भी तुम्हें ठिकाना देना पड़ेगा। तो पहले अगर हम भटक रहे हैं तो हमको भी भटका देगी वो अच्छी तरह से। तो अशुद्ध आत्माओं की प्रवेशता होती है, और संसार में अशुद्ध आत्माओं को भगाने के लिए तो बहुत सारे प्रयास करते हैं। हमको याद है बचपन में कोई एक रिलेटिव्स थे तो उनको उनके अंदर पता नहीं बोल सोल आती थी नहीं आती थी, हो सकता आती होगी, तो उनको ना कमरे में बंद कर देते थे वो, क्योंकि भागता था वो बहुत, और कमरे में बंद करके उसको मिर्ची जलाते थे उसके अंदर, उसका क्या हाल होता था, लाल मिर्ची आग में रख के और उसको कमरे में बंद कर देना, क्या हालत होती। तो यहां बाबा ने एक मुरली में कहा कि तुम्हें योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को तपाना है, स्वयं को योग अग्नि में डाल के रखना है। योग अग्नि में डाल के रखेंगे तो जो ईबल संस्कार स्वयं के हैं, ईबल संस्कार, ईबल स्वभाव, वो ईबल बातें, ईबल संग, वो स्वतः नष्ट हो जाएगा। और योग में भी हम उसके लिए अच्छे अच्छे विजन, जैसे बताया कि ग्रुप तैयार करो, तो उस ग्रुप में हम योग के अच्छे ऐसे विजन बना सकते हैं कि एक यज्ञ रचा हुआ है और जो जितनी भी ईबल आत्माएं हैं स्वयं सहित, क्योंकि स्वयं के अंदर भी ईबल संस्कार हैं, तो एक बाबा एक महायज्ञ रच रहा है और बहुत सारी उसके अंदर ब्राह्मण बैठे हुए हैं, अंदर नहीं उसके बाहर, यज्ञ के बाहर बैठे हुए हैं, आहुतियां डाल रहे हैं, तो एक योग अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और उस योग अग्नि में हम अपने ईबल संस्कारों को या स्वयं की आत्मा उसमें झोंक सकते हैं, क्योंकि वो योग अग्नि है, और उन ईबल आत्माओं को भी उस अग्नि में हम डाल रहे हैं, उस योग अग्नि में, और उस योग अग्नि से जो आत्माएं जैसे सच्चा सोना बनती जा रही है, हम भी बनते जा रहे हैं और वो भी सच्चा सोना बनती जा रही है। तो योग की जो बिजनेस है इसमें हमने देखा बहुत मन हल्का हो जाता है, लगता है कि उन आत्माओं को कुछ तो प्राप्ति हो रही है, क्योंकि सारी सूक्ष्म प्रक्रिया है। अब आत्मा आ जाएगी, अभी हो सकता है यहां भी बहुत सारी आत्माएं हैं लेकिन हमको दिख नहीं रही है, वो तो दिखेगी तब जो वो अंदर किसी के अंदर प्रवेश करेगी, लेकिन बिना प्रवेश था कि भी तो आत्मा एटमोसफेयर में बहुत सारी है ना, तूफान करेगी मचाएगी। तो यहां भी एक बार आई थी, बताया था पहले भी एक बार, यहां यही बैठ सचिन भाई बैठे यही आई थी और हम यहां बैठे थे उस समय भी, और हमको उसकी पूरी फीलिंग है, और देवेंद्र भाई वहां बैठे हुए तो फुल फीलिंग है, सूरज भाई वहां बैठे हुए थे, तो आत्मा जैसे एकदम इधर से आई और माता में प्रवेश कर गई, और माता बड़ी दुबली पतली थी, और वो माता हिंदू धर्म से संबंध रखती थी मानो, लेकिन जो आत्मा उनके अंदर है वो मुस्लिम धर्म की आत्मा थी। नहीं हम बोला तो हिंदी, लेकिन उसमें उन्होंने बोला था कि तुम्हारा बाबा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, नहीं तुम्हारा बाबा कुछ नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह ही करेगा, ऐसा बोला उसे उस माता ने। तो सूरज भाई सामने बैठे, तो निखिलेश भाई थे उस समय, हाँ हाँ, तो सूरज भाई ने तो बड़े इत्मीनान से निर्भयता से उनको शांति का दान दिया, कोई बात नहीं बैठ बैठे। लेकिन वो माता इतनी दुबली पतली और कारपेट बिछा हुआ था, उसके ऊपर टेबल खींचा नहीं जा सकता, लेकिन वो माता ने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ से टेबल उठा के पटक दिया, यहां से वहां फेंक दिया, सही इतनी ताकत। बाबा ने कहा ईवल आत्मा में बहुत ताकत होती है, चार दिन पहले था ना, बाप भी सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है, तो उतनी ताकत थी उसने टेबल ऐसे पटक दिया। और कोई कोई तो भाई कहते हैं हमारी तो कर्मेंद्र निष्क्रिय होगी जैसे सारी उसमें जब आत्मा आई पहले तो क्लास की बहुत अच्छी सुमान की, एकदम टाइट हो गए सब, जैसे आत्मा को तो निष्क्रिय हो गए सारे तो ये पहले से हमको कितनी तैयारी चाहिए उस चीज की। तो हमारी अवस्था नहीं, डरे तो नहीं थे उसमें कोई, क्योंकि एक तो था कि हम सब ग्रुप में बैठे हुए हैं, डर के ना होने के कारण ये थे, एक तो ग्रुप में बैठे थे हम और चर्चा करके हटे थे, बाकी तुरंत आए तो वो तो सब प्रभावित हो गए, एकदम कोई एंटर करेगा दरवाजा खुलेगा तुरंत, हम एकदम साइलेंस में बैठे, वो दरवाजा धड़ाक से खुलेगा तो थोड़ा तो हलचल में नहीं आते, बल्कि देखेगा कौन है क्या है कैसे है, विचार तो चलेंगे बुद्धि में, तो उसमें डर का माहौल तो कम ही था क्योंकि ग्रुप बैठा हुआ था, अच्छी चर्चा करके बैठे थे। और वास्तव में वो आत्मा जो माता जी थे, तो ग्रुप पूरा होने के बाद उन्होंने सूरज भाई से कहा था कि मुझे एक बात पूछनी है, इवल सोल के बारे में पूछ रहे, क्योंकि उनको पता था मेरे अंदर आती है वो, तो माता जी पूछने ही वाले थे, तो उधर से छोटे लाल भाई ने मना कर दिया कि नहीं अभी आप बात में पूछो, तो मना करने के बाद तुरंत वो आत्मा प्रवेश कर गई उसके अंदर। तो वास्तव में मना नहीं करना चाहिए, उसी समय पूछ सकते थे वो, क्योंकि उन आत्मा को शफा कौन देगा, वो दरवाजे पर मारे दर पर आया कुछ मांगने के लिए, और हम कुछ को दे नहीं रहे कि तुम छोड़ दे, तो उसी हाँ जी नहीं शाम के टाइम रात्रि 9:30 के आसपास 9:30 के आसपास बात है, तो उनको मना नहीं करना है क्योंकि वास्तव में वो आत्मा है ही कमजोर, वो तो शक्ति लेने के लिए आई है, कम से कम आई तो है हमारे पास मांगने के लिए, उसको पता यहीं से मिलेगा और कोई हट्टी है ही नहीं है। इसी तरह एक आत्मा आई थी शांति में, जब डायमंड हॉल में हम लोग बैठे हुए थे, तो मैं और निखिलेश भाई आजू बाजू बैठे हुए थे, और पीछे वो ग्रिल लगी होती है, बीच में ग्रिल लगी थी ना पार्टीशन डालने के लिए, तो पीछे माताएं बैठी थी, वो माताएं थी नरेला दिल्ली की माता थी वो, तो वो दुबली पतली थी एकदम, और वो ग्रिल लांग के आ गई, एकदम लांग के आ गई तो आगे जाने लगी, तो अब आसपास में तो सब पार्टी वाले बैठे थे, सेवादारी भाई बहने बैठे थे, तो किसी ने भाई माता किसी कैसे पकड़ेगा कोई उसको, तो किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन हम उठे और उसको पकड़ लिया इधर से, लेकिन जोर उसमें इतना ताकतवर, बात मत पूछो, थी दुबली पतली, हमने इधर से पकड़ लिया, वो बहुत आगे बढ़ रही थी, तो हमने उसको पूछा कहाँ जाना तुमको, बोला मुझे बाबा के साथ बाबा के पास जाना मिलने के लिए, तो मैं बोला ठीक है जाना चाहिए जरूर आपको तो, लेकिन आप इधर से नहीं जाओ, रास्ता इधर से बाहर से है, बाहर से जाना, तो क्योंकि हमको बाहर लेके आना था उसको पकड़ के, तो हमने पकड़ के उसके फिर मना संभाल पकड़ में आई नहीं रही थी उस, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया, फिर निखिलेश भाई को वो निखिलेश भाई आए, फिर उन्होंने भी पकड़ा साथ में, फिर हम दोनों पकड़ के उनको बाहर ले आए, और बड़ी मुश्किल से ले आए, इतना लोटपोट हो गई वो, और बाहर आके फिर निखिलेश भाई ने वो अपनी बोतल से पानी ठंडा वंडा पानी निकाला और छींटे वीटे मारे उसको थोड़ा, तो थोड़ा वो नॉर्मल पोजीशन में आ गई, तब छींटे मारे उनको, फिर उनकी जो साथी माता थी फिर वो आई, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर कोई आता है, तो आवाज तो उनको पहले हो गया थोड़ा कि कुछ तो है, लेकिन जब उन्होंने बोला इसके अंदर आता है, तो फिर वो बैठ गई माता, फिर हमने उसको अपनी चेयर दे दी, उसको बिठा दिया वहां उस माता को, फिर मेरे पास एक सेब भी था उस समय, वो सेब भी दे दिया उसको, मतलब चलो थोड़ा हाथ तो मिले कम से कम, कोई है भी इधर हमारे भाई बहन है अपने, तो वो तो सोल उस समय चली गई, फिर मुरली बाबा की चालू हो गई, 10 मिनट के बाद फिर वो आत्मा प्रवेश कर गई, और फिर वही उत्पात, फिर हम बाहर लेके आए दोनों, फिर बाहर बिठाया उसको कुर्सी के ऊपर, तो जैसे बाहर बैठाया तो जो आसपास वाले दूसरे भाई थे और भी भाई बहन बाहर आ गए, तो कोई तो कहता है इसको जूते मारो, तो हमको तो बड़ा खराब लगा उस समय, एक तो बेचारी कमजोर है, वो कुछ तड़फ रही है और ऊपर से मारने की बात कर रहे, तो हमको तो उसके गुस्सा तो नहीं कहेंगे लेकिन घृणा भावना तो पैदा हुई कि इसने ऐसे क्यों कहा इसको, तो मैं बोला भाई एकदम पहले कमजोर है, इसको तो मारने की बात कर रहा है बेचारी को, तो फिर हमने उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा, फिर उसको बड़े प्यार से वहां से पकड़ के हम तपस्या धाम लेके गए थे, और तपस्या धाम में बाबा के सामने बिठा के, फिर तो उसके सेंटर के दो चार लोग आ गए थे साथ में, भाई भी आ गया था एक, तो बाबा के सामने बिठाया हमने, कहा कि बाबा से दृष्टि लो आप, तो बोला नहीं मैं नहीं दृष्टि लूंगी। तो फिर मैंने उसके ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखा, मैं बोला देखो मैं आपका छोटा भाई हूं, तो मुझे क्या मुसीबत पड़ी है, ठीक है तुमको तकलीफ में रहना तकलीफ में रहो, तो तुम यहां बाबा के भगवान के घर में आई है तो तुम तेरी भलाई के लिए कह रहे ना, तुम बाबा से दृष्टि लो, तेरे अंदर जो भी है तुम भावनाएं हैं वो तेरी बाबा पूर्ण करेगा, तुम दृष्टि तो लो कम से कम पहले। तो जैसे हमने बोला ना उसको हम तुम्हारे भाई हैं, तो थोड़ा उसने फिर हमारी तरफ देखना शुरू किया, तो पहले देख नहीं थे किसी की तरफ क्योंकि वो कमजोर है, नजरें नहीं मिला पा रही है, तो फिर उसने बाबा की तरफ देखना शुरू किया उस आत्मा ने उस माता के माध्यम से। तो बाबा को देखने के बाद धीरे 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 वो ठंडी हो गई, फिर वो हाँ, फिर हमने उनसे पूछा कि कहाँ से आए आप, बोली मैं जयपुर से हूँ। तो कौन से गांव से, बोले गांव के नाम तो नहीं बताऊंगी, मेरा नाम क्या है, बोले जितेंद्र सिंह, वो थी वो माता, उसके अंदर भाई की सोल आई थी। मैंने क्यों आई इसके अंदर, बोला पिछले जन्म में इसने हमको बहुत तंग किया हुआ है, हमारे पूरे परिवार को बहुत तंग किया हुआ है। तो मैं बोला अभी आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में आप उसने तंग किया, अभी आप तंग कर रहे हो तो हिसाब तो बराबर ही रहा, फिर अगले जन्म में फिर आपको तंग करेगी, तो हिसाब खत्म कहां हुआ। मतलब आप यहां आए आपका सौभाग्य है, आपको भगवान के घर में एक थोड़ा आश्रय मिला है, तो यहां भगवान से दृष्टि लो और आपकी मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो ऐसे भटकते रहोगे। तो फिर थोड़ा थोड़ा उसने दृष्टि लेना शुरू की, फिर दो मिनट में वो आत्मा चली गई वहां से, फिर वो माता नॉर्मल में आ गई एकदम। और तीन चार महीने के बाद वो भाई मिला था हमको इधर, तो हमने पूछा था अभी क्या वो आती, बोला नहीं अभी नहीं आती है। तो आत्माएं तो आएंगी लेकिन हमको पहले से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी उसकी, तो डरना नहीं है किसी भी हालत में, 10-10 आएंगे तो भी डरने का नहीं है, क्योंकि वो भी तो उसी भगवान के बच्चे हैं ना जिसके हम हैं, वो बेचारे मार्ग से भटक गए हैं, बुरे कर्म कर बैठे हैं, इसके ऊपर उनका प्रभाव आ गया, वो कमजोर हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, तो उनको शफा कौन देगा, हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा है ना। तो उस अपनेपन की भावना रखे अगर उनसे हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें वो प्रभावित नहीं करेगी, अगर हम उनका ही प्रति बुरा सोचेंगे जैसे इसको जूता मारो तो वो जो सोचेगी कल को इस भाई ने कहा था जूता मारो, वो प्रवेश करेगी उसमें आगे। हाँ लेकिन वो जिसको भी बोला वो आत्मा फिर प्रभावित करेगी उसको आगे, जिसने उसको खराब बोला हुआ, क्योंकि मैंने कर्म का हिसाब था चालू कर दिया वहां, बोल सही बोला तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी है, फल तो निकलेगा, बीज तो बो दिया हमने, तो हमको बोलना भी नहीं कहीं, चाहे ज्ञान में कोई चलता है नहीं चलता है, ट्रीटमेंट हमको एक जैसा करना चाहिए सबके साथ, क्योंकि सभी उसी भगवान के बच्चे हैं। तो ऐसे आत्माओं का प्रभाव तो पड़ता जाएगा धीरे। तो बाबा ने कहा इसके लिए प्रोग्राम बनाओ, व्यक्तिगत प्रोग्राम भी। तो जब भी हम योग में बैठते हैं तो सारे संसार की आत्माओं को, जितनी भूत प्रेत बढ़ती तड़पती रोगी जो भी है सबको बुला लेने का, नहीं, और संगठन में बुलाने का, अकेले नहीं, लेकिन अकेले नहीं, वही बता रहे हो, अकेले नहीं बुलाने का, संगठन में बुलाने का। ये मधुबन में आए हैं या उन आत्माओं का आह्वान करना सूक्ष्म मतन में, जैसे हम सवेरे करते हैं कभी कभी, सब आत्माओं को सूक्ष्म मतन में, बाप दादा दोनों बैठे हुए हैं, पूरा ब्राह्मण परिवार और पूर्व जात में बैठी हैं, हम उस चक्र के अंदर में सुरक्षित हैं, और सब आत्माओं का आह्वान करना उसमें, तो क्या हम बुलाएंगे, तो इसका मतलब हम डरते रहेंगे जिंदगी भर, बुलाना है उनको। हाँ वो तो भाई अपनी अगर कमजोरी है, इसलिए बाबा कहते हैं पहले स्वयं के वातावरण को शक्तिशाली बनाओ, पहले स्वयं का वातावरण शक्तिशाली ने बुला लिया हमने तो वो प्रभावित करेंगे, तो पहले से स्वयं का वातावरण शक्तिशाली, सेवा केंद्र का वातावरण शक्तिशाली, तो फिर क्या सारे संसार की आत्मा को नित मुक्ति कौन करेगा, अगर हम उनको बुलाएंगे नहीं तो क्या संगम वैसे चलता रहेगा, सोचने विषय है, तो बुलाना तो पड़ेगा उनको है? सभी हैं, इसलिए बाबा ने आगे कहा निश्चय बुद्धि होकर के, क्योंकि उसका साथ हमारे साथ में, मुक्ति अगर हमने टाइटल ले लिया तो ज्ञान का एक हिसाब से भी मिस यूज करे, जो बाबा ने कहा ब्लेसिंग का, उसने हमको मुक्ति जीवन मुक्ति का टाइटल दिया और हम काम ही नहीं कर रहे उसके ऊपर, तो कब करेंगे फिर शरीर छोड़ने के बाद, तो काम तो पहले करना पड़ेगा ना, उन आत्माओं को पुकारना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, उनकी पुकार सुननी पड़ेगी, तभी तो हमको, नहीं तो हम भी मुक्ति नहीं हो पाएंगे। अगर हमने उन आत्माओं की सेवा नहीं की तो वो आत्माएं हमें ही अंत में प्रभावित करेंगी, हमारे पुरुषात्मक बाधक बन जाएंगी, और कभी कभी अभी भी चलते चलते पुरुषात्मक बाधक बन जाती है। आधा घंटा भी सारे दिन में हमने हमारा ठीक चला, नींद भी की है, सेवा भी ठीक से की है, और शाम को आधा घंटा भी योग में ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं, उसमें भी नींद आ रही है, तो कुछ प्रभाव है, चाहे विकर्मों का है या ईवल सोल का है। तो स्वयं को हमको देखना तो पड़ेगा ना, इसलिए हम हटना नहीं है पीछे, अभी जिस कर्तव्य के लिए हमने उसको उसने हमको निमित्त बनाया वो तो करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो कल करना तो पड़ेगा, और आज हमने किया हंस के नहीं किया तो कल रो रो के करना पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा में घुसेंगी। तो पहले से क्यों नहीं कर लिया हम, और इतने बड़े ब्राह्मण परिवार में संगठन में नहीं किया, अकेले में कैसे कर पाएंगे? तो उन आत्माओं का आह्वान तो करना ही है, क्यों नहीं करने का? जरूर करने का। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं प्रश्न। कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी ईवल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उसमें क्या करना चाहिए? तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए, और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे, फिर ये ईविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये मन को पकड़ती हैं, मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है तो शुरू से पहले का अर्थ क्या? शुरू हुई है उससे पहले, बिना समय गवाए शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे योगयुक्त आत्माएं विशेष योग भट्ठी करके, अर्थात शुरू से पहले का अर्थ है कि आत्माएं मानो कल आने वाली हैं, लेकिन हमको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, तो ये शुरू से पहले का हो गया है ना। तो शुरू से पहले से तैयारी करो, शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे योगयुक्त आत्माएं विशेष योग भट्ठी कर रख करके उसको शक्ति दें, और वह जो योगयुक्त ग्रुप है वह समझे कि हमको ये विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं वैसे ये प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से वे बच सकती है। अगर डॉक्टर ठीक होगा तो मरीज तो बचना चाहिए ना, अगर नहीं ठीक हो रहा इसका मतलब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया। हिसाब किताब तो है ही है, हिसाब किताब तो चुक तो कौन करेगा? हिसाब का हर मेथड का उसने हर क्वेश्चन का मेथड बताया हुआ है, है? नहीं देखो, पेशेंट जाने वाला भी अगर चला भी जाएगा तो भी उसके अगले जन्म में गति हो जाएगी, अगर हमारी शुभ भावना इतनी प्रबल है तेज है तो क्यों नहीं होगी। ड्राइवर कैसा भी, गाड़ी कैसी हो, ड्राइवर अच्छा तो किसी ना किसी तरीके से वो खींच के भी ले जाएगा, दूसरे की गाड़ी बुलाएगा, वो चारों पहिए पंचर होंगे तो टायर लेके आएगा, दूसरे टायर लगाएगा, वो कहीं से भी अरेंजमेंट करेगा। जहां चाह वहां रात तो निकली जाती है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे और प्रोग्राम होते हैं वैसे ये प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से वे बच सकती है। भले वे आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं भी बैठ सके, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है, तो वह भले ही ना बैठे लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि होकर करते रहो, निश्चय बुद्धि होकर करते रहो, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत हो जाएगी। बाइबल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो ये कार्य करना ही है, डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। तो ये था प्रश्न, फिर इसके संदर्भ में तो बहुत सारी मूल्य हैं। ओम शांति।